ओम शांति। शांतिवन में विशेष रूप से डायमंड हॉल में बैठे हुए सभी बाबा के अति सिकील दे सभी भाई बहनों, और साथ साथ और स्थानों पर भी जहां भी बैठे सुन रहे हों, सभी को ईश्वरी याद के साथ साथ आज के दिन की विशेष मुबारक हो। ये एक प्रकार से संगम युग का कुंभ मेला लगभग हर 3 सप्ताह के बाद शांतिवन में होता है। भिन्न भिन्न स्थानों से भाई बहने आते हैं, सेवा के लिए भी विशेष चांस लेते हैं। जैसे सभी को पता है, इस बार दिल्ली और आगरा सब जोन, दिल्ली जोन में आ जाते हैं सभी, तो सभी भाई बहने विशेष दिल्ली के लगभग 300 सेवा केंद्र हैं उनसे संबंधित, और आगरा सब जोन के भी काफी हैं, 100 के करीब वो भी होंगे। तो सब तरफ से आप सब भाई बहने पधारे हैं, आपका स्वागत भी कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये खुशी का एक दिन है कि बाबा से भी मिलेंगे। बड़े भाई बहनों से भी मिलते हैं, दादियों से भी मिलेंगे, और अच्छी तरह से अपने मन को खुशनुमा बनाएंगे। आज का जो विषय दिया गया है, संगम युग का आनंद, किसके संग हैं? ईश्वरी संग लिखा है, बाबा के संग, और साथ में ईश्वरी परिवार के संग। अकेला कोई भी पौधा इतना फलता फूलता नहीं है, बगीचे के अंदर होता है, शोभना भी बढ़ती, शोभनीक भी लगता और फलता फूलता भी है। तो संगम युग, बाबा कहते थे सिर्फ संगम ना बोलो, क्या बोलें हाँ? पुरुषोत्तम संगम युग, वह संगम युग, क्योंकि संगम तो दूसरे भी आते हैं, सत्युग त्रेता का भी संगम होता है, द्वापर और त्रेता का भी संगम होता है, कलयुग और द्वापर का भी संगम होता है, लेकिन ये है कलयुग का अंत और सत्ययुग का आदि। जब अंधेरी रात पूरी होने की है और फिर से नया सवेरा आने वाला है, ऐसा ये पुरुषोत्तम संगम युग। तो पुरुषोत्तम संगम युग पर सभी को फिर से पुरुषोत्तम बनाने के लिए किसका संग मिलता है? पहले किसका संग मिलता है? बाबा बाद में ख्याल में आता है। पहले संग मिलता है ब्रह्मा कुमारी बहनों का। ब्रह्मा कुमारी बहनें फिर धीरे धीरे परिचय देती हैं कि वास्तव में हमारा ये सत्संग जो है, इसको सत्संग किस आधार से कहते हैं? सत्य पिता के साथ जब हम मन लगाते हैं तब सत्संग होता है। तो सबसे पहले तो इसी बात की बहुत खुशी है कि हम आप सभी कल्प के बाद 5000 वर्ष के बाद फिर से आपस में मिले हैं। और हमें मिलाने वाला कौन है? निमित्त कौन बनता है? स्वयं भगवान बनते हैं, स्वयं परम पिता बनते हैं। जब तक वो इस धरा पर नहीं आते तब तक ना हम आपको जानते हैं ना आप हमें जानते हैं। एक को जानने से हम एक दो को भी जान पाते हैं। उस एक के साथ बाबा ने कहा, एक के साथ सर्व संबंध जोड़ने हैं। सर्व संबंध जोड़ते जोड़ते कभी कभी कोई सोचने लगते हैं इस दुनिया से मेरा कोई संबंध नहीं है। कोई सोचते हैं लौकिक परिवार से, ये तो लौकिक है, इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। ऐसा नहीं है। परमात्मा पिता के साथ संबंध है तो वो पिता हम सब बच्चों को आकर के अपना बनाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हम उनको याद करते रहे हैं, उनको ढूंढते रहे हैं, लेकिन वो कौन है, कैसा है, कैसे उसका संग किया जा सकता है? जब तक वो स्वयं इस धरा पर नहीं आते, स्वयं अपना परिचय नहीं देते, और सिर्फ अपना ही परिचय नहीं, सारे सृष्टि चक्र का भी परिचय देते हैं। सृष्टि चक्र के अंदर मुख्य पाठधारी कौन है उनका भी परिचय देते हैं। और फिर इस समय पुरुषोत्तम संगम युग पर जिनके द्वारा वो आकर के हम सबके समक्ष प्रत्यक्ष होते हैं, उनका परिचय भी देते हैं। याद है क्या परिचय है उनका, किसके द्वारा आते हैं? प्रजापिता ब्रह्मा। ब्रह्मा बाबा के द्वारा ही हम सब आत्माओं को शिव बाबा का परिचय यथार्थ रीति से मिला है। जब तक ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा ने उनके मुखारविंद द्वारा कुछ दो शब्द बोले नहीं, तब तक हम समझ नहीं पाते थे कि कैसे परमात्मा को याद करें, कैसे परमात्मा के साथ मन लगाएं। ढूंढते ही रहते थे, मंदिरों में भी ढूंढते रहे और स्थानों पर, धार्मिक स्थानों पर भी ढूंढते रहे, कोई नेचर में ढूंढते रहे, भिन्न भिन्न तरीके से उस एक की खोज करते रहे। और उस एक ने आकर के जब अपना परिचय दिया तो क्या कहते हैं, एकदम दुनिया की जो बातें उनसे न्यारा परिचय दिया, जो अभी तक सुनते आते थे, कोई कुछ कहता था कोई कुछ कहता था, तो बहुत सरलता से स्वयं का परिचय दिया कि मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, मैं कहां रहता हूं और आप सब आत्माओं के साथ मेरा क्या संबंध है। जब तक वो स्वयं परिचय नहीं मिला था तब तक मन भटकता ही रहता था, चाहे कितनी भी तपस्या में कोई अपने आप को मगन करते रहे लेकिन लास्ट में क्या शब्द निकलते रहे सभी ऋषियों मुनियों के मुख से, नियति नियति, ये भी नहीं ये भी नहीं, तो बाकी क्या है, तो बाकी क्या है, वो स्वयं जब अवतरित होकर परमात्मा बताए तब तक पता नहीं लगता है। तो सबसे पहले हम सबको इस बात की बहुत खुशी है कि हम सभी इस पुरुषोत्तम संगम युग में उस पिता की संतान, डायरेक्ट संतान आकर के बने हैं और उनके वारस बने हैं, ये सबसे बड़ी बात है। चाहे संख्या कितनी भी हो, थोड़े हों बहुत हों, बल्कि परमात्मा पिता तो सारे विश्व की आत्माओं का पिता है, तो सारे विश्व की आत्माएं उनके वारस बन सकते हैं और बनते हैं। फर्क क्या है, फर्क इतना है कि जो उनको सन्मुख पहचानते हैं वो जीवन मुक्ति भी प्राप्त करते हैं और मुक्ति भी प्राप्त करते हैं, और जो नहीं पहचानते हैं, याद वो भी करते हैं पहचानते नहीं हैं, वो मुक्ति को प्राप्त करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो इस समय को पहचानने की है कि ये समय कौन सा चल रहा है, सबसे श्रेष्ठ समय माना जाएगा, क्योंकि इस समय हम सारे कल्प के लिए अपने श्रेष्ठ कर्मों का बीज बोते हैं। श्रेष्ठ कर्मों का बीज बोने के फलस्वरूप क्या बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, अभी इस समय कहेंगे ब्रह्मा बाबा के बच्चे बनते हैं तो सभी ब्राह्मण बनते हैं। ब्राह्मण अर्थात जो अपने जीवन में पवित्रता को धारण करते हैं, जो अपने जीवन में दिव्य गुणों को धारण करते हैं, जो अपने जीवन को ज्ञानमय बनाते हैं। तो ऐसा जीवन हमारा जब बनता है तो संगम युग की सार्थकता सिद्ध होती है, नहीं तो संगम संगम कहते रहेंगे लेकिन संगम युग का आनंद नहीं आएगा। आनंद आएगा तभी जब ये ख्याल में रहेगा कि इस विशेष समय पर, ऐसे अलौकिक समय पर, ऐसे शुभ मुहूर्त के समय, ऐसा ही कहेंगे कि स्वयं परमपिता परमात्मा शिव हम सब के कल्याणार्थ, जो उनको कहा ही जाता है वो विश्व कल्याणकारी है, विश्व हितकारी है, वो हम सब के कल्याण के लिए इस धरा पर आकर पिताश्री ब्रह्मा बाबा के मुखारविंद से हम सबको बच्चे बच्चे कहकर के अपना बनाते हैं, और उनके साथ साथ में यूं कहें कि योग्यता भी भरते हैं। ईश्वरी ज्ञान जो इतना बाबा ने दिया है, ईश्वरी ज्ञान के फल स्वरूप एक नई रोशनी मिली है। तीसरा नेत्र सबका खुल गया है और उस तीसरे नेत्र के फल स्वरूप सृष्टि के आद मध्य अंत को समझते हुए और उसका भी आधार ये समझते हुए कि मनुष्यात्मों के कर्मों के अनुसार ही जब कर्म श्रेष्ठ बनते हैं तो उसकी रिजल्ट मिलती है सत्युगी दुनिया, और फिर सत्युगी दुनिया से आगे चलते चलते त्रेता में आ जाते हैं, फिर द्वापर में आते हैं, फिर कलयुग में आते हैं। लेकिन कौन आते हैं, सत्युगी कौन बनते हैं, त्रेता युगी कौन बनते हैं, द्वापर युगी कौन बनते हैं, कलयुगी कौन बनते हैं, ये स्मृति नहीं रहती है। अभी आकर के फिर से शिव बाबा ने हम सब आत्माओं का दीपक जलाया है, स्मृति का दीपक कहो, कि हम अनादि अविनाशी आत्माएं हैं और पिता परमात्मा की अनादि संतान होने के नाते पवित्र स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप हैं। ये अपना परिचय हम आत्माओं को अभी मिला है शिव बाबा के द्वारा। इस बात को अगर स्वीकार करें, इसके गहराई में जाएं, इसके अनुकूल अपने जो थिंकिंग प्रोसेस है, अपना जो सोचने का तरीका है, उसको थोड़ा सा हम उसका स्विच ऑन रखें, तो आप सोचिए कितना अपने जीवन में परिवर्तन आ जाएगा, कितना जीवन में आनंद आ जाएगा, कितनी जीवन में श्रेष्ठता आ जाएगी। अगर ये नहीं स्मृति रहती, बाबा कहते अगर स्मृति का स्विच ऑन नहीं करते तो फिर क्या होता है, अंधेरा ही रहता है, और अंधेरे में तो वही पुरानी बातें मन में आएंगी, पुराने संस्कार मन में आएंगे, पुरानी कर्म और उसके कर्म का फल सामने आता रहेगा। तो इस सब बातों से ऊपर उठाने के लिए, इन सब से डिटैच करने के लिए, इन सब से न्यारापन लाने के लिए बाबा ने पक्का कराया है कि अपने आप को स्मृति दिलाओ, अपने सो की स्मृति दिलाओ, अपने बाप की स्मृति दिलाओ, अपने भाग्य की स्मृति दिलाओ, अपने भविष्य की स्मृति दिलाओ कि कितना श्रेष्ठ भाग्य है, कितना श्रेष्ठ भविष्य है, और उसके फलस्वरूप जीवन में जो आनंद आएगा वो सबको बांटते रहो। जीवन में आनंद अकेले भी आता है, पर जितना बांटते हैं, दुनिया में तो कहते हैं भाई किसी को बताना नहीं, किसी को बताएंगे तो आपकी आत्मिक शक्ति कम हो जाएगी, ऐसा बोलते हैं। लेकिन बाबा ने कहा नहीं, अगर आप किसी को ज्ञान की बात सुनाएंगे, प्रेम की बात सुनाएंगे, आनंद की बात सुनाएंगे, तो ये मल्टीप्लाई करेगा, ये बढ़ेगा, एक से एक 11 हो जाएगा, और इसके फलस्वरूप धीरे 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 जितना ये ईश्वरी परिवार के भाई बहने बढ़ते जाते हैं, कोई ये ना सोचे पता नहीं इतना परिवार बढ़ जाएगा तो आगे चल के क्या होगा, बैठने की जगह मिलेगी नहीं मिलेगी, भोजन मिलेगा नहीं मिलेगा, हाँ आपको कोई तकलीफ है क्या, हाँ इतनी संख्या में भाई बहन आए हैं, 20,000 के करीब हैं, अभी 20 से भी ऊपर हैं। तो लेकिन सभी के लिए बाबा के दिल में सदा स्थान है और सभी बाबा के दिल तख्त नशीन होकर के रहते हैं, इसकी बहुत अपने को खुशी होनी चाहिए। और बाबा ने तो इस बात का बहुत ही एक सिंपल सा, बहुत सिंपल फार्मूला दे दिया कि जितना बाबा के साथ मन लगाएंगे, आनंद का सागर बाबा है, प्रेम का सागर बाबा है, सुख का सागर है, तो सागर के साथ मन लगाने से क्या होगा? आप मास्टर सागर बन जाएंगे। सिर्फ सुख स्वरूप नहीं बनेंगे, सिर्फ शांत स्वरूप नहीं बनेंगे, सिर्फ प्रेम स्वरूप नहीं बनेंगे, सिर्फ ज्ञान स्वरूप नहीं बनेंगे, लेकिन सागर के बच्चे मास्टर सागर बन जाएंगे। मास्टर ज्ञान के सागर, मास्टर प्रेम के सागर, मास्टर शांति के सागर, मास्टर आनंद के सागर। मास्टर समझते हैं, बच्चे को मास्टर कहते हैं। तो इस हिसाब से आप सोचिए कि बचपन का भी याद रहेगा और फिर मास्टर शिक्षा भी देते हैं, तो उस नाते से बड़े भी आप बन जाएंगे। दूसरों को शिक्षा देते हैं तो उस हिसाब से मास्टर भी हो गए। तो इस तरह से अगर अपने मन को बाबा के साथ लगाते हैं तो बहुत बहुत खुशी रहती है। और सहज रीति से ईश्वर का संग महसूस होता है, क्योंकि बाकी संग तो दुनिया में बहुत मिले हैं। भाई का भी संग मिला, बहन का भी संग मिला, पति और पत्नी का भी संग मिला, और जितने भी रिश्ते हैं सबके संग मिला। हर एक का अपना अपना पार्ट भी है, हर एक का अपना अपना प्यार भी है, और फिर कहीं कहीं थोड़ा सा मोहवश फिर मार भी मिलती है, ये भी देखा गया है। मोह के वश बहुत सारी ऐसी बातें आप डे टू डे लाइफ में महसूस करते हैं, लेकिन परमात्मा पिता जिसके लिए कहा जाता है कि उनके साथ सर्व संबंध जोड़ सकते हैं, तमेव माताश्च पिता तमेव, माता भी है पिता भी है, तमेव बंधु सखा तमेव, दोस्त भी है सखा भी है, तमेव विद्या द्रवणम तमेव, तमेव मम देव देव, ऐसे बोलते हैं। कोई गलती की हो तो माफ करना, लेकिन ये बात श्रीमद् भगवत गीता के आदि में, गीता पढ़ने से पहले आप पढ़ेंगे, इस तरह से परमात्मा की महिमा लिखी हुई है। तो ऐसे अगर सर्व संबंधों के ऊपर बुद्धि लगाएं हम कि वो माता कैसे है, तो बाबा ने अभी कल परसों की मुरली में बड़ा स्पष्ट किया था कि वो बाप है, और ब्रह्मा बाबा के द्वारा, ब्रह्मा बाबा के द्वारा आकर के ज्ञान दिया है। तो ब्रह्मा क्या है? ब्रह्मा बड़ी माँ है। तो ब्रह्मा माता बन जाती है, जैसे जिनके मुख से ज्ञान देते हैं। माता पिता भी हो गए, और फिर बंधु सखा कैसे हुए? बहुत प्यार से आके मिलते हैं, साथ में भोजन करते हैं, साथ में पिकनिक करते हैं, साथ में रास करते हैं, तो बंधु सखा हुए ना, दूसरा तो कोई कर नहीं सकता। और फिर इतनी श्रेष्ठ श्रीमत देते हैं जिससे हम फिर से मनुष्य से देवता बन जाएं, ऐसी श्रीमत देने वाला तो देवों का देव ही हो सकता है। सतगुरु कहो, देव कहो, देवों का देव कहो, वो ही हो सकता है, और कोई नहीं हो सकता है। तो बहुत गहराई से जब हम सोचते हैं इस बात को, तो इतना मन खुश होता है, इतना अंदर में एक गुदगुदी होती है कि ऐसा भाग्य हम आत्माओं ने पाया है जो दूसरे सब देख देख तरसते रह जाते हैं। हम लोगों के नैनों को देखते हैं मुस्कुराते हुए, होंठों को देखते हैं हम मुस्कुराते हुए, वो सोचते रहते हैं इनको क्या मिला है, ऐसी क्या बात है। लेकिन क्या कहते हैं, ये गुंगे की मिठाई, गुंगे की मिठाई समझते हैं, जो बोल ना पाए लेकिन मिठाई का आनंद तो वो लेता है, तो मुंह पे आ जाती है उसकी मुस्कान। तो बाबा की याद है गुप्त, जितना निराकारी स्वरूप में जाएंगे या अव्यक्त स्वरूप में जाएंगे, और जितना उनके साथ बहुत बहुत प्यार से रू रोहन करते, बहुत प्यार से मन लगाएंगे, तो आपका मन सदा खुश रहेगा। ऐसे ही नहीं कहा है बाबा ने, जो सारे श्रीमद् भगवत गीता का सार आकर के मिलता है, मन मना भव, इस ऐसी नहीं कहा है। मन मना भव अर्थात मन मेरे साथ लगाओ। क्यों लगाओ? आपके सुख के लिए, आपके आनंद के लिए, आपके शक्तिशाली बनने के लिए। मन ऐसा सुंदर साधन है जो आपको स्वर्ग का मालिक भी बना सकता है। और मन ही है जिसके लिए क्या कहा जाता है कि ऐसा तेज घोड़ा है जिसको वश करना बड़ा मुश्किल है। सुना है आपने मन रूपी घोड़े की बातें? तो सुनी हुई है ना पहले भक्ति मार्ग में। तो मन रूपी घोड़े को वश करने का एक सहज साधन बाबा ने क्या दे दिया? मन मना भव, मन मेरे साथ लगाओ। क्योंकि सर्वशक्तिवान के साथ मन लगने से सर्वशक्तियां अपने पास आ जाती हैं, तो मन रूपी घोड़ा उसकी लगाम बिल्कुल अपने हाथ में सहज रीति रहती है। फिर ना वो धोखा दे सकता है, ना धोखा दे सकता है, ना आपको गिरा सकता है, बल्कि आप जैसा चाहेंगे वैसा ही वो चलेगा। और ऐसा चलेगा बल्कि बार बार आपको कहेगा चलो वापस बाबा के पास, चलो बाबा के साथ फिर से अपना प्रीत की रीत निभाते चलें। जितना बाबा के साथ प्रीत रहेगी तो प्रीतम के साथ प्रीत के फल स्वरूप सदा आनंद में रहेंगे, खुशी में रहेंगे, सुख में रहेंगे, और दूसरों को भी सुख शांति बांटते रहेंगे। ऐसी सुंदर ये चीज है, लेकिन ये मिलती कभी है? इसी पुरुषोत्तम संगम युग पर। तो समय की पहचान बहुत जरूरी है। चलते चलते कभी कभी कलयुगी सीन दुनिया के जो सामने आ जाते हैं, चाहे अखबारों के द्वारा चाहे टीवी के द्वारा, उसकी चर्चा ज्यादा हो जाती है, और जो हमारे काम की बातें हैं वो सब साइड पे रह जाती हैं, सभी जानते हैं। तो अपने को ये बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि बाबा ने पुरुषोत्तम संगम युग की वैल्यू के बारे में जो बताया है कि इसका एक एक सेकंड बहुत वैल्यूएबल है, इसको व्यर्थ ना गंवाएं। एक एक सेकंड, एक सेकंड में आप क्या से क्या प्राप्त कर सकते हैं और एक एक सेकंड में क्या गंवा सकते हैं, इस बात का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो अपने मन के जो संकल्प हैं उसके ऊपर बहुत अटेंशन चाहिए, उसका ये ध्यान चाहिए कि मेरे मन में पॉजिटिव थॉट्स चल रहे हैं या कोई नेगेटिव भी चल रहे हैं। अगर नेगेटिव चलते हैं तो फट से बाबा को सामने लाओ, बाबा को अर्पित करके फिर से जंप लगा करके नेगेटिव से वापस पॉजिटिव में आ जाओ। उसका और कोई तरीका नहीं है। कई बार ऐसा देखा गया है, चिट्ठी लिखते हैं, बाबा को लिख करके पत्र देते हैं, सब करते हैं, लेकिन ये युक्ति नहीं आती है कि पॉजिटिव थिंकिंग कैसे करें। आजकल पॉजिटिव थिंकिंग कोर्स सबको बहुत पसंद आते हैं, और वास्तव में बाबा ने शुरू से लेकर के जब से 7 दिन का कोर्स करते हैं यही बात सिखाई, आत्मा का अपना जो सच्चा स्वधर्म है उसमें स्थित हो जाओ। सच्चा स्वधर्म आपको सुख देगा और देह का पर धर्म जो है ये दुख देगा। जितना सुख पाना चाहो वो पा सकते हो, लेकिन अपने स्वधर्म की स्थिति में न सिर्फ स्थित हो करके बल्कि उसको अच्छी तरह रियलाइज करो। पहली बात है ज्ञान मिलना, ज्ञान के आधार से स्मृति बनती है, स्मृति के आधार से रियलाइजेशन होती है। तो जो सेल्फ रियलाइज्ड सोल होती है, जिन्होंने आत्म अनुभूति की होती है, वो सबसे ज्यादा आनंद में रहते हैं, सबसे ज्यादा सुख में रहते हैं, सबसे ज्यादा श्रेष्ठ थिंकिंग उनकी रहती है। और उनके मन में और क्या आएगा, थोड़ा तो कुछ सेवा का भी आएगा या नहीं आएगा? हाँ, अगर सिर्फ इतने तक सीमित रहेगा तो कहेंगे भाई इतना सब ज्ञान लेने के बाद भी ये तो स्वार्थी हैं, सिर्फ अपना ही सोचते हैं। लेकिन नहीं, बाबा ने फिर एक बहुत अच्छा टाइटल दे दिया, कौन सा? आप सभी, चाहे एक गांव में बैठे हैं, छोटी जगह में बैठे हैं, बाबा ने कहा बच्चे आप सभी विश्व सेवादारी हो, विश्व सेवादारी। आप उस गांव में बैठ करके भी शिव बाबा की याद में अपने मन को टिकाते हैं और अपने प्रकंपन चारों तरफ फैलाते हैं, तो उसके फल स्वरूप आप सारे विश्व की सेवा कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ अपनी सेवा कर रहे हैं, अपने परिवार की सेवा कर रहे हैं, अपने गांव की सेवा कर रहे हैं, लेकिन सारे विश्व को पावन बनाने के लिए इतने श्रेष्ठ प्रकंपन आप चारों तरफ फैला रहे हैं। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। बाबा जो इतना मुरली के अंदर, इतना याद प्यार के समय, इतना ऊंचाई से बाबा बात करते हैं, ऐसे ही नहीं करते हैं। हम लोग अपने आप को नहीं पहचानते, तो अपने को पहचानना जरूरी है कि सचमुच हम बाबा के रूहानी बच्चे हैं, ईश्वरी बच्चे हैं, छोटे बच्चे नहीं हैं, ईश्वरी बच्चे हैं, ईश्वरी संतान हैं। और ईश्वरी संतान किस समय होती है? सारे कल्प में कब आते हैं? पुरुषोत्तम संगम युग पर। तो पुरुषोत्तम संगम युग भी याद रहेगा और साथ में हम ईश्वरी संतान हैं, उसका नशा भी सदा रहेगा। और ईश्वरी संतान होने के नाते सारा विश्व अपना है, पराया नहीं है। तो सारे विश्व की सेवा के लिए हम निमित्त भी बनते रहेंगे। जितना निमित्त बनेंगे, निमित्त बनने के लिए सबसे बड़ा गुण कौन सा आएगा? जो बाबा भी अपने आप को क्या कहते थे, साकार द्वारा क्या कहते थे, सुंदरलाल भाई बताओ क्या कहते थे? आई एम योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट फादर, मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट फादर। अपने आप को कभी बाबा ने ऐसे रूप से नहीं दिखाया हमें कि मैं सबसे बड़ा हूं, लेकिन नहीं, बहुत निर्माणता से। तो कहा जाता है अगर बाबा के समान आपको बनना है तो क्या करना है? बाबा को फॉलो करना है। जैसे बाबा ने अपनी जीवन को इतना सरल, इतना श्रेष्ठ और इतना सादगी में रखा, हम बच्चों को भी वैसा ही बनना जरूरी है। जितना सरलता से चलेंगे, जितना निर्माणता से चलेंगे, जितना श्रेष्ठता से चलेंगे, तो उतना ही हम दूसरों की सेवा के निमित्त बन सकेंगे। जितनी सेवा करेंगे, सेवा का फल क्या मिलता है? विश्व सेवाधारी बनेंगे तो विश्व के मालिक बन जाएंगे। विश्व के मालिक अर्थात सत्यु के विश्व महाराजन बन जाएंगे। महारानी बन जाएंगे। महारानी महाराजा नहीं तो कम से कम प्रिंसेस और प्रिंस तो बन ही सकेंगे ना, भाई क्या बनेंगे हैं? क्या बनेंगे? महाराजा बनेंगे। अच्छा बहने क्या बनेंगी? बहनों में से महाराजा कोई नहीं बनेंगे नहीं ठीक है, जिसको जो पार्ट पसंद है आपके ऊपर है, खुशी से लो, खुशी खुशी चलो, खुशी दिल में रखो, मन में रखो, खुशी बांटते रहो और सारी दुनिया को खुशहाल बनाने का दृढ़ संकल्प अपने पास रखते चलो। जितना ये दृढ़ संकल्प रहेगा उतना जल्दी जल्दी सतयुग की स्थापना का कार्य पूरा होगा। तो उसके लिए बहुत दृढ़ संकल्प होना जरूरी है। कभी कभी अच्छा मूड में आते हैं, अच्छे उमंग में आते हैं, फिर चलते चलते हाँ अभी एक दो दिन पहले भाई एक मिले, कहते हैं यहाँ मधुबन आते हैं तो जैसे नशा चढ़ता है, फिर कुछ समय के बाद दो तीन महीने के बाद वो ठंडा हो जाता है, उसके लिए क्या किया जाए? मैंने कहा उसके लिए तो भाई रोज जैसे शरीर को ठीक रखने के लिए भोजन करना पड़ता है तो भोजन करते रहते हैं, पानी पीते रहते हैं, दूध पीते रहते हैं, इसी तरह से रोज बाबा की याद और बाबा की इतनी श्रेष्ठ मुरलियां जो हैं उसका आनंद लेते रहेंगे और साथ साथ दूसरों की सेवा के निमित्त बनते रहेंगे तो आपका जो नशा है वो कम नहीं होगा, बढ़ता ही रहेगा। नशे में बाकी सब नशे में क्या कहते हैं और नशों में है नुकसान, एक नशा है जिसमें नुकसान नहीं है, वो कौन सा है? नर से श्री नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी पद प्राप्त करने का नशा, उसमें कोई नुकसान नहीं है, उसमें अपना भी फायदा है और जहान का भी फायदा है। क्यों? श्री नारायण या श्री लक्ष्मी बनना माना सारे विश्व की सेवा के निमित्त बनना, ऐसा जब आपके अंदर भाव होगा तो सदा वो भावना काम करती रहेगी और जैसी जैसी भावना वैसा वैसा उसका फल मिलता रहेगा। तो ऐसी आज की ये विषय इतनी अच्छी है, उसके लिए फिर एक ही बात जो लास्ट में मेरे को लिखी हुई मिली है कि ये तभी संभव हो सकता है जब ईश्वरी संग हो, ईश्वरी संग। अब ईश्वरी संग एक तो सूक्ष्म योग के समय मैं आत्मा और मेरा बाप वो पिता परमात्मा दोनों का संग आपस में जो है सबसे श्रेष्ठ, फिर उसके बाद फरिश्ता रूप की बात, अगर सूक्ष्म वतन में तो ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा के साथ हम भी अपने फरिश्ता स्वरूप में उनका संग करें, और तीसरा इस धरा पर सबसे श्रेष्ठ संग किसका है? ब्राह्मणों का। ये ना भूल जाइए, ब्राह्मणों का आपस में मिलना, जैसे आज आप सब यहां बैठे हैं शांति वन में, तो यहां पर कौन बैठे हैं? कौन बैठे हैं? हर एक अपने नाम के आगे लिखते हैं बी के फलाना, बी के फलानी, तो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। तो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी सिर्फ हम आप नहीं हैं, देखा जाए तो ब्रह्मा बाबा की तो सारी दुनिया संतान हो गई। तो ब्रह्मा कुमारी ब्रह्मा कुमार इतना श्रेष्ठ नाम है, इसको कभी भूलना नहीं। आप अगर इसको याद रखेंगे तो हमेशा नशा चढ़े रहेगा कि हम ऊंचे से ऊंचे बाप के बच्चे, ऊंचे से ऊंचे परिवार के सदस्य हैं। ऐसी भावना जब रहेगी तो आप आपकी दृष्टि भी ऊंची रहेगी, वृत्ति भी ऊंची रहेगी, कृति भी ऊंची रहेगी और ऊंचे ते ऊंचे बाप की सेवा में सदा बुद्धि बिजी रहेगी। बुद्धि को बिजी रखना बहुत जरूरी है। अगर बुद्धि को आपने फ्री छोड़ दिया तो कहां से कहां आपको ले जाएगी, भटका देगी। इसलिए बुद्धि को बिजी रखने का सहज तरीका है बाबा ने जो कहा, याद और सेवा। याद और सेवा, ये दो बातों पर बाबा का बहुत ध्यान। और साकार बाबा के सामने हम सब बच्चे तो इस बात के लिए पक्का, हमको बाबा ऐसे करते थे, अपना चार्ट लिखो, रोज का चार्ट, और फिर साथ में सेवा के लिए भाग दौड़ करवाते रहते थे। तो आप मुरलियों में, साकार मुरलियों में पढ़ते ही हैं, सुनते ही हैं, लेकिन कहने का भाव है कि ये ईश्वरीय जीवन को अच्छी तरह से पहचानना, इसकी वैल्यू को समझना और फिर उसकी वैल्यू अपने दिल में रखना। हम कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है, वास्तव में इस दुनिया के अंदर ऊंचे से ऊंचे बाबा के बच्चे हैं, और ऊंचे से ऊंचे होने के नाते हमारी थिंकिंग कितनी ऊंची होनी चाहिए, हमारे कर्म कितने श्रेष्ठ होने चाहिए, हमारी बोली कितनी मीठी होनी चाहिए, ये सब बातों के ऊपर जब ध्यान जाएगा तो अवश्य ही इस पुरुषोत्तम संगम युग का जो समय है उसको हम सफल करेंगे। और बाबा की जो सर्व हम सबके प्रति भावनाएं हैं और बाबा की जो श्रीमत है उसको हम पूरा कर सकेंगे। ऐसी शुभ भावना के साथ सब भाई बहनों को फिर से बहुत बहुत मुबारक और धन्यवाद। अभी थोड़ा टाइम क्या करेंगे, थोड़ा सा सीधे बैठ जाएं। और खुशी खुशी बहुत प्यार से बाबा के साथ मन लगा के बैठें, क्योंकि दुनिया में कहते हैं साइलेंस इज गोल्डन, स्पीच इज सिल्वर, ऐसा बोलते हैं। तो पहले तो ऐसे ही बोलते थे, समझ में नहीं आता था। अब समझ में आता है कि अगर शिव बाबा के साथ मन लगाना है तो जितना साइलेंस में जाएंगे उतना समीपता रहेगी। अगर मन में संकल्प इधर उधर के आएंगे तो उतना शिव बाबा से दूर हो जाएंगे। तो एक ही संकल्प कि हम बाबा के संग मन लगाकर बाबा से अपने में शक्ति, शांति, ईश्वरी प्रेम और आनंद का संचार कर रहे हैं और बाप समान बनने का अभ्यास कर रहे हैं। ओम शांति।